जय धवला, पुस्तक 11वीं, लेक्चर नंबर 8। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयरियारं, नमो वज्जायारं, नमो लोए सौवसाहूनं, वेदगवेदगवेदगं अवेदगं वेदगं ससंसिद्धं सिद्धं परमियशिरसा वोच्छं वेदगमायायम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धवला टीका है, जो कषाय पौर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 68 पर आगे 68। उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीर्णा का अपना प्रकरण चल रहा है और उसमें अभी हम काल की बात देख रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा काल का अधिकार अपना चल रहा था। हमने देखा था कि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का जो उदीरक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय देखा और अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय देखा था और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कितना था? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा। नहीं, जब तक उत्कृष्ट दोबारा नहीं होगा तब की बात। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक का एक समय, क्योंकि मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जीव लिया था वहाँ, चौथे गुणस्थान वाला मिथ्यात्व के सन्मुख, तो उसका एक ही समय होता है, जघन्य कहो या उत्कृष्ट कहो। अनुत्कृष्ट का कितना काल देखा था हमने?
अंतर्मुख और कुछ कम।
जघन्य काल अंतर्मुख
और शासक कुछ कम था, एक अवली में
एक अवली कम शासक साथ, क्योंकि एक अवली जब बाकी रहती तो उसकी उदीर्ण ही रुक जाती है। सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का एक समय, मिथ्यात्व के सम्मुख है तब, और अनुत्कृष्ट का जो उसका है अंतर्मूर्त होगा, जो गुणस्थान का काल, जघन्य कहो या उत्कृष्ट कहो। अन्य कर्मों में हमने ये बात देखी थी विशेष तरीके से कि जिनका उदय परिवर्तन होता है क्रोध मान माया लोभ में, उसका उत्कृष्ट जो
एक समय
इन्हें अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होगा, उनके उत्कृष्ट का जो काल है वो एक समय या दो समय होगा अधिक से अधिक, परंतु अनुत्कृष्ट के काल में डिफरेंस है। उसका अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय देखा हमने अन्य के तरह, और उत्कृष्ट में एक अंतर्मूर्त होगा। उसके बाद आदेश में हमने जानने की शुरुआत की थी, नारकियों में भी मिथ्यात्व नपुंसक वेद अरति शोक के जो उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट दो समय, जैसे ओग ने देखा था वैसे अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागरों का, क्योंकि किसी किसी के अरति शोक का उदय इतने दूर तक यानी लंबे काल तक चलेगा। 16 कषाय 4 9 कषायों में तो उसके उदय चेंज होते रहते हैं, तो अनुत्कृष्ट में जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होगा। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जैसे हमने ओग में देखा था एक समय अंतिम समय में मिथ्यात्व के सन्मुख वाले, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर, जब तक वो समय दृष्टि रहा उसका अनुत्कृष्ट रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व का
अनुष्ठान का एक समय चलेगा।
पहली पृथ्वी में जो होगा एक समय घटित होगा,
बाकी
पहली पृथ्वी में अनुष्ठान का जगन्नीकाल एक समय घटित होगा, क्योंकि एक समय और आवली की सत्ता सहित वो आया है और जगन्य है, तो उसको अनुष्ठान ही कहेंगे हम। बाकी अन्यत्र जो है वो अंतर्मूर्त होगा। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, अब तीरियन तो हमें देखेंगे 68 पृष्ठ पर। तीरियन चो में मिथ्यात्व नपुसक वेद और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है, यानी यहाँ मिथ्यात्व में उत्कृष्ट का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल दो समय, अनुत्कृष्ट का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल असंख्या, ये तीरियन चो में घटित होगा। नपुसक वेद में
वो एक समय और दो समय उत्कृष्ट का,
हाँ उत्कृष्ट का एक और
दो समय और
अनुत्कृष्ट का भी एक समय और असंख्यात सिद्धल समय। मिथ्यात्व का भंग के भंग के समय उत्कृष्ट कब होगा, मिथ्यात्व के सम्मुख है तभी होगा। और अनुत्कृष्ट का जो है अंतर्मुख जैसे हमने देखा था। तीर्यंचों में सम्यक्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, जैसे ओग में देखा था हमने मिथ्यात्व के सम्मुख वाला जीव है तब उसके उत्कृष्ट होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्यों को है, जब तक वो समय दृष्टि रहेगा तब तक रहेगा। 16 कषाय और 6 नौ कषायों का भंग पहली पृथ्वी के समान है, यानी उसके अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटेगा। स्त्री वेद और पुरुष वेद के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्व को भी पृथक्व अधिक ध बराबर करना अधिक
तीन पल्यों।
मैंने लगातार पुरुष वेद में या स्त्री वेद में रहने का काल यहाँ लिया। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व का भंग स्त्री वेद के समान है। स्त्री वेद के समान है ने क्या
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्ले में अनुत्कृष्ट काल
अभी
नहीं नहीं होगा कोटि पृथक अधिक। तो यहाँ पे
मिथ्यात्व का भंग है, मिथ्यात्व का क्या होगा जघन्य उत्कृष्ट का तो एक समय दो समय होगा, अनुत्कृष्ट में फर्क पड़ेगा। जघन्य तो एक समय
होगा
और उत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा, अनुत्कृष्ट यानी वो अनुत्कृष्ट ही रहा मिथ्यात्व, उत्कृष्ट किया ही नहीं।
तीन पल्ले
वो पंचेंद्रियों में ही होगा, वो पंचेंद्रियों में घटित करे ना, पंचेंद्रियों में ही नहीं होगा, पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में घटित करना है तो वो कितना होगा, तो पूर्व कोटि हो सकता है।
अधिक तीन पल्ले भी ले सकते हैं ना, मिथ्या दृष्टि भी दो कोटि में भी उत्पन्न हो सकता
है, पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले। नपुसक वेद के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि से तत्व का, यहाँ तीन पल्ले नहीं लेना क्योंकि भोगभूमि में नपुसक वेद नहीं है। तीर्यंच पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है और योनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद नहीं है, और योनियों में योनि नियम मीटर है। योनियों में सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अनुत्कृष्ट का जो एक समय घटित होता है समय प्रकृति का वो कृतकृत्य वेदक वाले के होगा, योनिनी में वो नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ उसका जघन्य काल कब होगा अनुत्कृष्ट का, जब वो अंतर्मुहूर्त तक वेदक समय विषय रहा तब होगा। अधिक तीन पल्ले पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले नहीं है, बंद की बात नहीं है, उदय की बात चल रही है। बंध भी बंध तो मिथ्या दृष्टि के होगा परंतु मरण के पूर्व नहीं होगा, वहाँ पर मरण के इमीडिएट पूर्व नहीं होगा, परंतु बंध तो वहां होगा, मिथ्या दृष्टि है तो नपुंसक वेद का बंध तो रहेगा वह।
भोग भूमि में बंद होगा क्योंकि वहां पे तो वो देव,
इसीलिए मैंने कहा देवगति में जाने एक अंतर्मुख पहले तो नहीं होगा।
हाँ।
अन्यथा तो होगा
है ना? नहीं वहां पे तो निरंतर तो देवगति बंधेगी ना, नहीं पर देवगति के साथ नपुंसक वेद बन सकता है क्योंकि देवगति जो जीव देवतर बांधता है उसका नपुंसक वेद का बंध हो सकता है।
देवगति के साथ श्री पुरुष वेद का होगा, बंधन योग्य प्रकृतियां हम भोग भूमि के निकाल के देखने पड़ेगी। कर्मकांड में कहां मार्गणा में कहां कौन सी प्रकृति बनती है, भोग भूमि की बात अलग दी नहीं उन्होंने, फिर भी
क्योंकि जो वहां पे तो निरंतर
वहां तो देवगति
का ही बंद होगा।
हाँ।
तो नपुंसक वेद का भी बंद नहीं होगा ना,
देवा यू बनती है, अन्य गति बनती है कि नहीं बनती है। उसमें है कि नहीं मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कर्मकांड में, क्योंकि उसके टेबल जो बनाए ना कर्मकांड देखें आप, अभी जो नई पुस्तक है उसमें देखो या अपने जो ढूंढारी में देखी हमने उसमें देखो।
अच्छा नई पुस्तक,
नई पुस्तक में भी मिलेगा, उसके टेबल बने हैं ना।
गति तो तीनों में से कोई भी,
आयु तो देवायु ही बंधेगी वो तो निश्चित है। अब वहाँ बंध योग्य प्रकृतियों में देख लेना, हाँ देवगति का ही बंध
है,
मिथ्या दृष्टि भी देव में ही जाने वाला है, क्योंकि देवगति के साथ बंध योग्य तो वो तो नाम कर्म की 28 प्रकृति
है, देवगति के साथ तपस्या वेद नहीं बनता है।
उसके योग्य उसके प्रकृतियां बंधेगी, फिर भी वो जो नाम कर्म का पैकेट है उसमें तो मोहनी का बात नहीं है, मात्र नाम कर्म की बात है। वहाँ पे नाम कर्म के जो टेबल बना वहाँ तो वेदों की बात तो है ही नहीं। देवायु ही बांधता है, गति की बात जो है इसीलिए बंध योग्य प्रकृतियां देखनी पड़ेगी भोग भूमि की अलग से अगर लिखी हो तो। आप एक पेपर पर ये जो प्रश्न उठते हैं ना लिख के रखना, अभी मैं पढ़ा पढ़ा होते तो नहीं लिख सकती क्योंकि इसका उत्तर कोई ना कोई ढूंढे, तो ये जो अनुत्तरित रहते हैं ना तो अपने पास लिखे हुए होते तो जो हमें क्या ढूंढना है वो भी बाद में तो भूल जाते हैं ना, अपना विषय आगे चलता है तो ये बात रह जाती है। वहाँ यहाँ क्या देखा हमने, यहाँ तो उदय की बात चल रही है, यहाँ पर नपुंसक वेद के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि सुतत्व प्रमाण है, क्योंकि यहाँ तो उसका तो उदय ही नहीं है भोग भूमि में, यहाँ तो कोई बंद का बात उसकी बात ही नहीं। तिरियंच पर्याप्त को में हमने जो पढ़ा था, योनिनी की भी बात पढ़ी थी। अब विशेषार्थ, भोग भूमि में नपुंसक वेदी परिचेंद्रिय तिरियंच नहीं होते यह उक्त काल प्ररूपणा से सूचित होता है। यही कारण है कि पंचेंद्रिय तिरियंश पर्याप्तकों में नपुंसक वेद के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा। मनुष्य पर्याप्तकों में भी नपुंसक वेद की अपेक्षा इसी प्रकार जान लेना चाहिए, चाहिए हुआ। शेष कथन सुगम। अब यहाँ बंध की बात क्यों आई थी, बंध है हाँ बंध है कि नहीं उसकी बात चल रही आगे पढ़ेंगे अपना 175 पंचेंद्रियं च पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। पंचेंद्रियं च पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग का तो जैसे अन्य प्रकृतियों में देखा, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी लगातार अनुत्कृष्ट ही रहे तो उसका अपना पर्याय का काल अंतर्मूर्त है, काय स्थिति भी और भव स्थिति भी। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तिरिंच त्रिक के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि सम्यक्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है तथा मनुष्य पर्याप्तकों में जघन्य काल एक समय है। लक्ष्मी बहन आप बताएंगे मनुष्य पर्याप्तकों में जघन्य काल एक समय का, और मात्र मनुष्य त्रिक अगर ले लेंगे या मनुष्य इन जनरल ले लेंगे तो अंतर्मूर्त का याद है आपको? हाँ बोलो बोलो बोल गए। नहीं 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 सम्यक प्रकृति की बात चल रही, सम्यक प्रकृति के अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा। कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा एक समय जो घटित होता है वो मनुष्यों में क्यों नहीं घटित होगा? नहीं, वो भी भूमि में जन्म लेगा कि नहीं लेगा?
सपना मनुष्य ही करता है। सपना
वो नहीं दो ना, यानी मनुष्य यहाँ मरकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ तो मनुष्य का मनुष्य ही रहा तो उसमें एक समय कैसे घटित होगा? देवनारकी तीर्यंश में हम एक समय इसलिए घटित करते हैं कि आवली प्लस एक समय सहित वहाँ जन्म लिया है तो उसका एक समय घटित होगा उस पर्याय में, पर यहाँ भी मनुष्य था वहाँ भी मनुष्य रहा तो उसका एक समय तो घटित नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात क्या है कि यहाँ कहते मनुष्य पर्याप्तकों में जघन्य काल एक समय है, यानी वो पहले मनुष्य नहीं था जब सपना शुरू की थी और मरकर पुरुषवेदी हुआ वहाँ पर, तो एक समय के लिए वो घटित होगा। कृतकृत्य वेदक के साथ पहले मनुष्य नहीं था, सपना प्रारंभ की और कृतकृत्य वेदक में आवली प्लस एक समय बाकी था तब वहाँ का भोगभूमि का मनुष्य हुआ, उसको मनुष्य पर्याप्त कहेंगे क्योंकि वो पुरुषवेदी है, तब उसमें एक समय घटित होगा। ख्याल में आई बात ये? नहीं आई? देखो यहाँ बात है अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का एक समय कैसे घटित होगा। तिर्यंच की बात देखो, पहले हमने तिर्यंच को याद करते हैं, तिर्यंच की बात पढ़ना। यहाँ जो सम्यक प्रकृति का अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट कहाँ ऊपर लिया होगा ना, सेकंड लाइन में सम्यक्व के उत्कृष्ट अनुभाग के वो जघन्य उत्कृष्ट एक समय बताया, अनुत्कृष्ट अनुभाग के तीसरी लाइन उदीरक का जघन्य काल एक समय है, तो तिर्यंचों में सम्यक प्रकृति के अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय कैसे घटित होगा? बोलो, तिर्यंचों में सम्यक प्रकृति के अनुत्कृष्ट उदीरणा का जघन्य काल एक समय कैसे घटित होगा? समय प्रकृति का जो हम चर्चा अभी कर रहे थे, थोड़ा तो सोचते देखते
सपना वाला एक समय का, अरे आवली प्लस एक समय के साथ हुआ।
आया अब नीचे के लाइन में क्या लिखा है उसी पैराग्राफ में, योनिनियों में सम्यक्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूल, वहाँ एक समय क्यों नहीं घटित किया था? क्योंकि सम्यक दृष्टि योनिनी में उत्पन्न नहीं होगा इसलिए, तो योनिनी में जघन्य कब होगा? जब मिनिमम काल के लिए अंतर्मूल के लिए वेदक समय दृष्टि रहेगा फिर मिथ्या समय जाएगा तो उसके अनुत्कृष्ट का एक अंतर्मूल होगा। अब मनुष्यों में आना, मनुष्य इन जनरल बात करेंगे तो जिसने एक सपना प्रारंभ की वो भी मनुष्य है और वहाँ मान लेते हैं मनुष्य ही बांधी थी और वहाँ मरकर मनुष्य, वहाँ भी मनुष्य ही है तो उसका एक समय कैसे कहेंगे? हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी मनुष्य पर्याय तो चल ही रही है, काय स्थिति चल रही ना। पहले भाव में उसने सम्यक प्रकृति की जो क्षपना वगैरह समय दर्शन, वो क्षायिक समय दर्शन का कार्य शुरू किया और कृत्य वेदक के साथ वहाँ उत्पन्न हुआ, परंतु वो एक समय अलग तो नहीं गिन सकते, क्योंकि पहले भी वो मनुष्य था, अभी भी मनुष्य है। पहले अगर पुरुष वेदी होता और बाद में फिर पुरुष वेदी होता तो भी एक समय घटित नहीं होता है, तो कब होगा? कि पहले योनिमत यानी स्त्री वेदी था, यानी मनुष्य नहीं था, उसने क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करने का प्रोसेस चालू किया और मरकर मनुष्य हुआ है। अभी कौन सा मनुष्य होगा? पुरुष वेदी होगा। पहले स्त्री वेदी था तो अभी हमारे कथन बदल गए ना, अभी हम उसको सामान्य मनुष्य में नहीं गिना रहे, अब उसको हम पर्याप्त मनुष्य कह रहे हैं, क्योंकि वो पुरुष वेदी है। तो पहले क्या था? तो स्त्री वेदी था। तो स्त्री वेदी ने क्षपना प्रारंभ की, मरकर पुरुष वेदी मनुष्य हुआ, तो उसको हम पर्याप्त मनुष्य कह रहे हैं। पहले हम उसको पर्याप्त मनुष्य नहीं कह रहे थे, पहले हम उसको मनुष्य नहीं कह रहे थे। अब वो एक समय और आवली बाकी है, तो वहाँ जो उदीर्णा होगी उसकी, तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। इसलिए यहाँ क्या कहा? मनुष्य पर्याप्त को में जघन्य काल एक समय। ख्याल में आई बात है? रेना बिन ख्याल में आई ना बात? विशेषार्थ, मनुष्य पर्याप्त को में सम्यक्तों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय कैसे घटित होता है, इसका स्पष्टीकरण इसी प्रसंग से प्रकृति उदीर्ण अनुयोग द्वार में किया है, इसलिए उसे वहां से जान लेना शेष कथन सुगम है। प्रकृति उदीर्णा तो अभी आने वाली है, अभी हम नहीं, प्रकृति उदीर्णा प्रदेश आने वाले, ओ सॉरी, हाँ हाँ, प्रकृति उदीर्णा की बात हो रही है, हाँ हाँ, मैं वो प्रदेश की बात सोच रही थी। तो यही है, मनुष्य ही है, वो मनुष्य पर्याप्त में उत्पन्न हुआ। हाँ, यूजुअली जो लिखा है उसी को कहेंगे ना, मनुष्य ने सम्यक तो प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, वो लेना। देवों में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, वो सर्वत्र ऐसा ही है चारों गतियों में। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, ये मिथ्यात्व के अनुदीरक चल रही है, अनुत्कृष्ट चल रहे हैं, मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट काल 31 सागरोपम है। नौवे ग्रहवेग में मिथ्या दृष्टि ही रहा और उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं। इसी प्रकार पुरुष वेद की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम। अनुत्कृष्ट का जैसे मिथ्यात्व आदि अन्य प्रकृतियों में एक समय घटित करते हैं, उत्कृष्ट था एक समय के लिए, अनुत्कृष्ट हुआ फिर उत्कृष्ट हुआ।
पुरुष वेद का एक समय पर अनुदिष्ट और अनुत्तर में तो नहीं होगा ना, कि वहाँ पे भी हो सकेगा
पुरुष वेद का वहाँ
अनुत्कृष्ट एक समय जो हम पकड़ते हैं वो उत्कृष्ट की अपेक्षा पकड़ते हैं, तो अनुदिष्ट में और अनुत्तर में एक समय हो सकता है?
यहाँ बढ़ेंगे आगे, होने में कोई बाधा तो नहीं है। इसका भी है, वहां भी है, क्योंकि सत्ता का कहां चला जाएगा अनुभव? आगे पढ़ेंगे उसको, है आगे। इसी प्रकार स्त्रीवेद की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 55 पल्लोपम, यानी स्त्री वेदी यानी देवियों की उत्कृष्ट आयु ली। सम्यक मिथ्यात्व हास्य रतिका भंग ओग के समान है, ये अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अंतर्मूल होता है। 16 कषाय अरति शोक भय और जुगुप्सा का भंग पहली पृथ्वी के समान है, वो भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटेगा। सम्यत्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये देव इन जनरल बात चल रही, वो भी मिथ्यात्व के अभिभूत ऐसा जीव लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय, वो कृतकृत्य वेदक और उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम वेदक समेत उसकी राहत हुआ। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर नव ग्रेवेक तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। हास्य रति का भंग रति और शोक के समान है, इतनी विशेषता है कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल कितना होना चाहिए। हा? कितना होगा?
अंतर्मूल।
क्यों क्यों ये भी मालूम है?
सम्यक्त्व में रहने का जगह लेता
नहीं, वहाँ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न नहीं होता, इसलिए एक समय वहाँ घटित नहीं होता।
कहते ये तो हास्यरति का बंद अरति शोक के समान बताए, तो हास्यरति का तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट का तो 6 मास हो जाएगा ना।
किसमें चल रही थी
ये नीचे से दूसरी लाइन, हाशिया और रति का भंग रति और शोक के समान, तो देव में तो
हास्य और रति का भंग ओघ के समान है। ओघ में तो बताया था ना,
नहीं हास्य और रति का भंग रति और शोक के समान है ऐसा लिखा है ना नीचे से दूसरी लाइन।
वो कहाँ लिखा है? भवनवासी से नव ग्रह एक तक की बात चल रही है ना,
तो सतार
सहस्रार में आ गया है, फिर भी वहाँ देखो ओग में क्या लिखा था।
नहीं ओग की अपेक्षा नहीं, यहाँ अरथ्य और शोक के समान लिखा है इसलिए।
देखो जरा पहले अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल हास्यरथ का 6 महीना वहाँ पर लिया है ना, वही सामान्य देव में भी बताया। ऊपर हास्यरथ का भंग आ गया था,
वो तो ओक के समान बताया, पर यहाँ पे अरुत्य और शोक के समान बताया इसीलिए बोले।
वो तो आगे बताएंगे सहस्रार में, सहस्रार को छोड़कर अरति शोक के समान है। हम आगे विशेषता अच्छा, पढ़ते ही नहीं और घाई करते हैं ना, तो ये हो जाता है। तो इतनी विशेषता है कि भवनवासी अंतर, वो तो पहले उन्होंने क्या डिफरेंस है तो सम्यक्त्व का डिफरेंस है, फिर और क्या डिफरेंस है? स्त्रीवेद के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रम से, ये भवनवासियों की बात कर रहे हैं ना,
तीन पल्योपम।
हाँ, तीन पल्योपम, साधिक एक पल्योपम और साधिक एक पल्योपम। सौधर्म और ऐशान कल्प में स्त्रीवेद का भंग सामान्य देवों के समान है, यानी 55 पल्योपम। आगे के देवों में स्त्रीवेद नहीं है, ये आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ है। सहस्रार कल्प में हास्य रति का भंग सामान्य देवों के समान है, जो विशेषता होती है पहले जनरल स्टेटमेंट होता है सामान्य पता, और जहाँ जो कोई डिफरेंस है वो बाद में बताते हैं। अनेक समयत्व के बारे में डिफरेंस था, स्त्रीवेद के बारे में था, और हास्य रति के बारे में जो था वो उन्होंने बता दिया। अनुदिष्ट से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व और पुरुषवेद के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 2 समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, इसका अर्थ क्या है? अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो सकता है ना, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। 12 कषाय और 6 नौकषायों के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल 2 समय है, उनके लिए वो उत्कृष्ट होगा वहाँ के लिए जो कुछ ऐसा है। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मुख, क्योंकि कषाय पलटती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। सभी प्रश्नों का उत्तर आ गया। आगे क्या है, कितनी बातें जितनी पढ़ेंगे हम उसकी क्लैरिटी वहाँ स्वयं हो जाती है। इस आगे एक तो जघन्यो काल, इससे आगे जघन्य काल का अधिकार है। इससे आगे जघन्य काल का अधिकार है, अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र वचन है। सवासिम पैडीनम जघन्य अनुभाग उगीरगो केवचिरम कालादहोदी, सब प्रकृतियों के कोई छोड़ा नहीं, जघन्य अनुभाग के उदीरक का कितना काल है यह सूत्र सुदम। जघन्य उत्कर्षेन एक समय, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यथा सम्यक्व विशुद्ध, सम्यक्व विशुद्ध का सर्व विशुद्ध, सम्यक्व विशुद्ध, सम्यक्व विशुद्ध संयम के अभिमुख अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का जघन्य स्वामित्व होता है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व आदि का भी जानना चाहिए। इसलिए अंतिम विशुद्धि से जिन्होंने जघन्य स्वामित्व प्राप्त किया है, ऐसी इन प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग की उदीरणा का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय मात्र ही होता है, यह सिद्ध हुआ। हाँ हाँ, इन प्रकृतियों के वो अंतिम समय लिया विशुद्धि का। अब सब प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग की उदीरणा के जघन्य और उत्कृष्ट काल के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, समझने के लिए, उदाहरण करना है नहीं जानना। पहले हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगाया, वहां जघन्य को भी अनुत्कृष्ट कहेंगे, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा ही अनुत्कृष्ट, किस रूप में उदीरणा हो रही है उसको वहाँ कहा। उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट उदीरणा कहेंगे, बाकी सारे अनुत्कृष्ट। अब यहाँ एक जघन्य को छोड़ेंगे तो बाकी सारा अजघन्य कहेंगे। अजघन्य अनुभाग उदीरणा पयड़ी उदीरणा भंगो, अजघन्य अनुभाग उदीरणा की काल विषयक प्ररूपणा प्रकृति उदीरणा के समान है, क्योंकि प्रकृति उदीरणा के काल से इनके अजघन्य अनुभाग उदीरणा के काल में कोई अंतर नहीं है। यतः सूत्र द्वारा प्राप्त अर्थ के विषय में सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए, अतः और आदेश का कथन करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का अनुगम करते हैं। यथा जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, अजघन्य अनुभाग के उदीरक के तीन भंग हैं, उनमें जो सादी शांत भंग है, कौन से तीन भंग होने चाहिए? सादी शांत,
अनादि अनंत होगा,
अनादि अनंत,
अनादि शांत होगा,
अनादि शांत होगा, अनादि अनंत होगा और सादी शांत होगा। ये अजघन्य की बात चली ना, उनमें जो सादी शांत भंग है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है। इसका अर्थ क्या है, सादी शांत कैसे होगा?
संयम, संयम के अभिमुख जी हुआ तभी उसका जघन्य होगा है, और पीछे मिथ्या तो हमें आएगा,
उसको जघन्य करने की जरूरत क्या है?
अच्छा, नहीं अजघन्य का,
अजगण्य वो मिथ्यात्व में रहने का मिनिमम अंतर्मुख, कोई समय दृष्टि मिथ्यात्व में आया और वापस समय को प्राप्त किया, एक अंतर्मुख। तो जो साधी शांत भंग है उसका जगन्य काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल उपार्थ भूतगत, क्योंकि साधी लिया ना, साधी कब होगा जब सम्यक से गिर कर मिथ्यात्व में आएगा, तब उसको जगन्य को बार बार जरूरत नहीं उसकी।
अच्छा, अजगन्य
सम्यक छूट कर मिथ्यात्व में आया तो अजगन्य ही है वो, यहाँ नहीं था और हुआ है उसको जगन्य नहीं भी किया है, ऑर्डिनरी समय को चौथे गुण स्थान में गया है, चौथे से छूट कर पहले में आया है तो उसका जगन्य ही है। यानी बीच में जगन्य हो जाए उसके बाद तो अजगन्य नहीं होता है, उसके बाद अनुदीरक होता है और फिर उदीरणा करेगा, यानी क्या है, फिर मिथ्यात्व में। यानी उसके शादी होने के लिए उसको संयम में से आना पड़ेगा, ऐसी कुछ बात नहीं,
सम्यक्त्व से आना पड़ेगा।
सम्यक्त्व तो उसका छूट गया है, मिथ्यात्व तो शुरू हुआ है, तो अजगण्य ही है त्रुआत। जब जाके सम्यक्त्व के अभिमुख होगा तब उसका जगन्य होगा। सोलह कषाय भय और जुगुप्सा के जगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अजगन्य हुए अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, इनका वो बदलता रहता है ना उदय, इसलिए अजगन्य का जगन्य काल कैसे लिया, एक समय में पलट गया उदय, तभी होगा ना। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद के जगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये कब होता है, अपने अपने वेद के उदय सहित सपना करने वाला जीव उसका अंतिम समय लेना, उदीरणा का अंतिम समय। अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य काल क्रम से एक समय अंतर्मुख।
अच्छा, श्रेणी से उतरते समय,
हाँ श्रेणी से उतरते समय एक समय के लिए स्त्रीवेदी रहा, फिर मरकर पुरुषवेदी हुआ, पुरुषवेदी में अंतर्मुख कैसे,
वो तो पर्याप्त पुरुष से इसका जगन होता है।
हाँ?
पर्याप्त पुरुष से इसका जगन होता है,
पर्याप्त तो एक पर्याय का जगन निकाल लिया, ऐसा भी ले सकते हैं हम कि श्रेणी से उतरते समय पुरुष वेद की उदीरना शुरू हो गई।
हाँ?
और सपक श्रेणी चढ़ा।
हाँ?
तब भी होगा, परंतु अभी कौन सा अंतर्मोध बड़ा है ये था योग्य समझ। और एक समय नपुसक वेद के लिए भी एक समय, और उत्कृष्ट काल क्रम से, यानी वो थ्रू आउट अजगण्य ही रहा, कितना है तो स्त्री वेदियों का काल लेंगे, 100 पल्लोपम पृथक्व, पुरुष वेद के लिए 100 सागरोपम पृथक्व, और नपुसक वेद के लिए अनंत काल। यह अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है, क्योंकि वो थ्रू आउट नपुसक वेदी का ही उदय रहा उसका, और उसका अजगण्य ही रहा, वहां जगन्य का कोई सवाल नहीं। हास्य रति अरति और शोक के जगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, याद है हमने कल पढ़ा था कहाँ होता है उसका स्वामित्व तो देखा था।
हास्य और रति के,
हाँ हाँ,
के अंत में,
हाँ पूर्वकरण के अंत में देखा, उदय की स्थिति की हमने कल बात निकाली थी ना, उसका एक समय। अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रम से 6 महीना और साधिक ध बराबर नहीं 33 सागरोपम है, ये ओग की अपेक्षा यह घटित होगा, क्योंकि जहाँ जो है उसको ले लेना, और जगन्य का जगन्य काल एक समय कैसे होगा?
अरे उतरते समय एक समय, अच्छा वहाँ पे वो कैसे घटित होगा?
हाँ मैं वही पूछ रही आपको।
हाशिया रति का उदय हो गया,
इसका उदय एक समय में पलट सकता है, हमने देखा था पहले।
हाँ
एक समय में उदय पलट सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के, जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक उदीरक के काल का भंग उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के समान है। यानी जघन्य का तो एक ही समय होगा उनका अपना अपना, उदीरना की बात है नहीं यहाँ पर, सत्ता में कब जघन्य होता है उसकी बात नहीं है, जघन्य के साथ उसकी उदीरना चल रही है ये बात
एक ही समय के लिए।
समय को की कब ली थी हमने? कुत्ते कुत्ते वेदक के एक समय आवली बाकी तब लिए। समय मिथ्यात्व का कब लिया था?
चौथे गुणस्थान के समय,
तीसरे में से चौथे में जाने वाले के अंतिम समय में देखा, उसका एक समय होगा। और जघन्य का कितना है?
अंतर्भूत और कुछ कम चाह सकता है ना, सम्यक्त्व का कुछ कम था सकता है,
सम्यक्त्व का अजघन्य
अंतर्भूत और कुछ कम था सकता है।
हाँ कुछ कम यानी आवली और एक समय कम करो उसमें,
और सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मूत
अंतर्मूत। अब 72 पृष्ठ पर आते आदेश से मार्कियों में
ये समय तुम्हें अजगन्य का उत्कृष्ट काल पूरा शासक सागर काल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो तीसरे गुणस्थान में जाएगा तो पूरा शासक सागर काल तक वो समित्व का अजगन्य का उदीरक ले सकता है।
अंतर्मूल तो उसको छूटना ही पड़ेगा
पहले वाला,
पूरे शासक सागर रहता है तो साइट बन जाता है, समय मिथ्या तो में जाना है तो अंतर्मूर्त नीचे आने पड़ेगा, भले मिथ्या तो में जाए या समय मिथ्या तो में जाए, एक अंतर्मूर्त कम होगा उसमें से। हमें छियासठ सागर में से आवली प्लस एक समय ही घटाना है, बाकी तो उसको अजगर में रखना है, तो उत्कृष्ट काल तभी प्राप्त होगा। आदेश से नारकियों में नपुसक वेद अरति और शोक के जघन्य करो, जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय।
ये जघन्य अनुभाग का दो समय
और उदीरक, उदीरक तो सारे नपुसक वेद के उदीरक है, है ना? अब उसका जघन्य कब होगा?
विशुद्ध परिणाम,
विशुद्ध परिणाम कब हो गए? समय दृष्टि के शुद्ध परिणाम होगा ना, यहाँ उदय की बात है, यहाँ बंदे की बात नहीं चल रही है। देखो निकाल के स्वामित्व आदेश में जघन्य देखना है ना हमको, ये हमें इसमें देखना है ना आदेश में नारकियों में 61 पेज। अन्यतर सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि की होती है, तो 150 नंबर का पैराग्राफ था, पेज नंबर 61 पर देखा। वहाँ आदेश से नारकियों में जहाँ लिखा है ना 150 नंबर, वहाँ नीचे पांचवी लाइन में 12 कषाय और 7 9 कषायों की जघन्य अनुभाग उदीरणा किसके होती है? तो सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि के होती है, ये बात आई थी वहां। अब यही बात यहाँ लेना है,
वहां तो एक ही समय दिखाता ना, यहाँ पे दो समय दिया इसीलिए।
क्या क्या?
यहाँ पे जो ये सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि को होती है तो वो परिणाम दो समय तक रह सकता है अनुभाग वाला,
वही तो देख रहे हैं ना विकाल में,
सर्वविशिष्ट समय दृष्टि का वही परिणाम।
जैसे उत्कृष्ट के दो समय घटित किए थे वैसे जगन्य के भी दो समय, यहाँ इनके बारे में आदेश में, क्योंकि ओग में जगन्य कहाँ में देखा था हमने,
ओग में तो सपना में देखा था,
सपना में देखा था, आदेश में जगन्य उनकी जहाँ
सर्वविशिष्ट के साथ होगा,
जैसे संकलेश सर्व संकलेश होता है तब दो समय उत्कृष्ट का घटित किया था, वैसे सर्व जगन्य ये जो है सर्व विशुद्ध होगा तो उसका जगन में दो समय के लिए गठित किया। अभी हम उसी को तो देख रहे हैं काल को, यानी होगा क्या नहीं होगा ये शंका का अवसर ही नहीं है, यहाँ बता रहे हैं वो। देखो आदेश से नारकियों में क्या लिया, नपुसक वेद अरति शोक के जगन्य अनुभाग के उद्वीरक का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल दो समय, मिथ्या तो को नहीं लिया है वहां पर। मिथ्यात्व का तो एक समय होगा क्योंकि वो
तो नहीं तो वो तो
प्रथम वहां तो जब समय तो प्राप्त करेगा तब की बात है, उत्कृष्ट काल दो समय यहाँ पड़ा है ना हमें। अभी इनके अजगन्य अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागरों को में। अब अरति और शोक का जो 33 सागरों को में वो सातवें नरक की अपेक्षा,
नपुसक वेद का भी
नपुसक वेद का तो होता ही है परंतु अरति शोक तो
सातवें नरक
किसी के होगा, सातवें नरक सबको होगा ऐसा भी। इसी प्रकार बारह कषाय हास्य रति भय जुगुप्सा की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनके अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी उनके भी जघन्य दो समय घटित किए उन्होंने, एक समय कम से कम और दो समय अधिक से अधिक, और अनुत्कृष्ट नहीं कहेंगे हम अजगन्य कहेंगे, अजगन्य का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, यानी जघन्य से एक समय तक अजगन्य हुआ फिर जघन्य हुआ, जैसे हमने उत्कृष्ट में गठित किया ऐसे अजगन्य जगन्य में गठित करना, ये आदेश की अपेक्षा से बात करनी है। अन्यत्र जब हम ओग में या मनुष्य में देखते हैं सपना में जहाँ जगन्य है वहाँ दोबारा लौट कर अजगन्य नहीं होता, यहाँ हम आदेश में देख रहे हैं नारकियों में देख रहे हैं तो विशुद्धि समय दृष्टि की जो है फिर वो जगन्य होकर फिर लौट कर अजगन्य होता। नपुसक वेद अरति शोक में और इसमें क्या डिफरेंस किया कि ये तो अंतर्मूर्त में लौट कर फिर उस कषाय में आएगा और कषाय किसी एक कषाय में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही है। नपुसक वेद 33 सागर तक घटित किया था अरति शोक भी वैसे इसमें नहीं होगा, 12 कषाय और इनमें नहीं होगा हास्य रति भजी उठता, ये ख्याल में आ रही बात। सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, सम्यक्त्व में एक समय घटित, अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरों को में। अब ये जघन्य का एक समय और अजघन्य का एक समय कैसे कहेंगे लक्ष्मी बेन आपको बताएं, सम्यक्त्व का जघन्य किसके होगा, हाँ और अजगन्य का एक समय दो समय लेके आया है, दो समय और आवली था, एक समय के लिए अजगन्य रहा दूसरे समय में जगन्य किया और फिर वो आवली में प्रवेश कर गया, फिर उसके उदीर्णा नहीं कहेंगे उसको उदय कहेंगे, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर सातवें नरक में गया वहां पर समय को प्राप्त किया थ्रू आउट अजगन्य रहा उसकी बात। सम्यक मिथ्या और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओग के समान है,
जगन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल
जघन्य का एक समय, उत्कृष्ट का
सम्यक लिखे,
कहेंगे अजघन्य कहेंगे,
अजघन्य का अंतर्भूत।
तो इसको बारह कषायों से अलग से निकालना,
यहाँ पे निश्चयता होती है।
तो इसका जघन्य कब लेंगे?
संयोगता के पहले,
वो तो अनुभाग विभक्त ही नहीं होता है।
इसका जघन्य तो इसका जो भी संयोगता करता है कभी अंतिम समय में होगा ना,
उदीर्णा वहाँ होती है अनंत में
नहीं होती सर। अच्छा ये सम्यक तो के सम्मुख वाला जीव लेना,
सम्यक तो प्राप्ति के यानी वो
सर्वविस्तृत
अंतिम समय वाला मिथ्या दृष्टि है। ओके समय उसका एक समय होगा। तो इसमें और बारह कषाय में क्या डिफरेंस किया, ये मेरा प्रश्न था।
बारह कषाय में दो समय लिया है।
हाँ, बारह कषाय में दो समय हो सकते हैं, यहाँ एक समय,
यहाँ पे
इसलिए इसको अलग निकाला। मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाव के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, वो भी प्रथमोक्षण समय प्राप्त करने के पूर्व अंतिम समय होते। हमने स्वामित्व में इसको प्रथमोक्षण में लिया था, है ना? और बाकी तो संयम के अभिमुखों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं ली, वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा। अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी मिथ्यात्व में रहने का छोटा अंतर्मूर्त, सम्यक्व से गिरकर मिथ्यात्व में आए वापस सम्यक्व प्राप्त। और उत्कृष्ट काल 33 सागरों का है, यानी वह थ्रोट मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ मिथ्यात्व में ही रहा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदीरक देख रहे हैं, तो पूरे 33 सागर। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि सम्यक्व के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय, सम्यक सम्यक की उदी रखनी। सम्यक के जघन्य अनुभाग का उदीरक जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय, दो समय तक उसने जघन्य किया, यानी वो विशुद्धि के काल है।
ये सर्व विशुद्धि काल ये अनंतानुबंधी की सपना में होगा, वो काल में होगा कि कोई दूसरा?
अनंतानुबंधी सपना नहीं कहो,
योजना करेगा तभी होगा ना सर्व विशुद्धि।
इसी प्रकार पहली से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अरति और शोक का भंग हास्य और रति के समान है, यानी पहली से लेकर छठी तक, यानी अंतर्मूर्त वाला होगा एक समय से लेकर अंतर्मूर्त। इतनी विशेषता है पहली पृथ्वी में सम्यक्व के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा। तीर्यंचों में देखेंगे अभी हम, मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तीर्यंचों में क्या देखा था हमने स्वामित्व में? प्रेरणा तो याद, हाँ हाँ, मिथ्यात्व का सम्यक्व का नहीं।
पहले से ही वेदक,
हाँ हाँ, संयम संयम प्राप्त करने वाला लिया,
तो यहाँ पे वेदक लेना पड़ेगा,
वेदक लिया, सीधे पांचवे में जाने वाला लिया,
पहले से पांचवे के सम्मुख वेदक समय
एक समय। और जघन्य अनुभव, हाँ मिथ्यात्व की बात चल रही, हाँ नहीं वेदक होना चाहिए बात नक्की नहीं है,
परंतु कल
हमने जो जघन्य देखा था,
हमने वेदक में
प्रथम उपशम के काल में क्या होता है, अंतर होता है और नीचे आता है और उसकी आवली प्लस एक समय तब उदीर्घ की देखी थी, और यहाँ पर उसका अंतिम समय देखा था। मिथ्यात्व का अंतिम समय देखा है
मनुष्य और केरियन के सामने वेदक
ऐसा वेदक ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है
सर,
परंतु ये संयमा संयम के अभिमुख और वहाँ संयम के अभिमुख और देव और नारकियों में उन्होंने लिखा था कि प्रथमोत्तम प्रथम सम्यक के अभिमुख लिखा और प्रथम सम्यक के अनु अभिमुख में एक आवली प्लस एक समय क्योंकि उत्तीर्णा तभी तो रुकेगी उसकी प्रथम स्थिति में क्योंकि दूसरी स्थिति में से आना रुक गया अभी उत्तीर्णा कहाँ से चल रही है प्रथम स्थिति में से वो कब रुकेगी आवली और एक समय बाकी है तब और यहाँ मनुष्य और तीन समय मिथ्यात्व तो का अंतिम समय लिया था यानी वो वैदिक समय दृष्टि होना चाहिए तो तीरियन समय जो उसका जगन्य का काल एक ही समय घटित होगा अब अजगन्य अनुभाग के उद्दीरक का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है क्योंकि अजगन्य का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त कैसे होगा मैं भाई मिथ्यात्व के अजगन्य उदीर्णा का जगन्य काल कम से कम काल कैसे होगा कब होगा मिथ्या तो गुणस्थान है अंतर्मूर्त कब कहेंगे हम उसको सम्यक को छूट कर मिथ्या तो में आया वापस सम्यक को प्राप्त तो जगन्य काल
अंतर्मूर्त
क्योंकि उसको देखो अन्यत्र हम बारह कषाय वगैरह में जो अभी हमने नारकियों में देखा था तो वहाँ दो समय घटित किए वहाँ लिया था ना हमने नपुसक वेद अरति शोक आदि में दो समय घटित किए थे तो जहाँ दो समय घटित करो तो वहाँ अजगन्य से जगन्य होकर वापस अजगन्य हो सकता है या जगन्य होकर अजगन्य होकर वापस जगन्य हो सकता है तो बारह कषाय में अजगन्य है वो एक समय इसलिए घटित होता है कि जगन्य से अजगन्य हुआ और फिर वापस जगन्य हुआ ऐसे मिथ्यात्व में एक समय का अजगन्य घटित होगा कि नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि मिथ्यात्व का जगन्य तो मिथ्या तो गुणस्थान के अंतिम समय में होता है सम्यक तो प्राप्त करने के पूर्व तो एक समय के लिए जगन्य में से अजगन्य हो जाए और फिर जगन्य हो जाए ऐसा तो नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा इसलिए उसका अजगन्य का जगन्य का अंतर्मुहूर्त और अजगन्य में रहने का अधिक से अधिक काल तो मिथ्या तो में ही रहा थ्रूआउट गति में तो असंख्या पुद्गल परिवर्तन
ये भव्य की अपेक्षा भी हो जाएगा ना यही कारण
भव्य में असंख्या पुद्गल परिवर्तन कैसे होगा भव्य ने अभी जिसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है उसमें होगा
उस पे होगा ना
जिसने अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है उसके होगा वो भव्य है या अभव्य है उसकी बात नहीं है यहाँ पर वो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको भव्य मत तो अभी यानी वो उसके पास भले भव्य तो गुण पड़ा है अभी उसने प्राप्त नहीं किया सम्यक्त्व के जगन्य अनुभाग के उदीरक का अभी हमें सोचना है सम्यक्त्व का जगन्य कब होता है तिरियन शो में सम्यक प्रकृति का जगन्य कब होगा होगा ना
बराबर
तो उसका जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय थोड़ा स्वामी तो सोचेंगे ना तो हमें ये पता चलेगा क्यों कह रहे अजगन्य अनुभाग के उदीरक का जगन्य काल एक समय है यानी कृतकृत्य वेदक दो समय के साथ वहां पर आया दो समय और अवली वही लेना कृतकृत्य वेदक दो समय अधिक अवली और वहां एक समय अधिक अवली लिया था तो उसका एक समय होता है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्लों पर कुछ कम क्यों लिया सम्यक्त्व के साथ तो जन्म नहीं ले सकता वहां जाने के बाद प्राप्त किया सम्यक मिथ्यात्व और आठ कषायों का भंग ओघ के समान है सम्यक मिथ्यात्व में तो हम देखते हैं सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य कब होता है तो एक समय के लिए होगा जब चौथे के सन्मुख है तब और उसका अजगन्य का अंतर्मुहूर्त तो होगा
उसमें रहने का था।
अजगण्य का एक समय होगा कि नहीं होगा?
नहीं
नहीं रहेगा। आठ कषायों का भंग ओघ के समान है। आठ कषाय कौन से लेने? तीर्यंश में आठ कषाय कौन से लेने?
नहीं नहीं नहीं
ना,
प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लेना पड़ेगा। नहीं तो बात तो बारह कषाय बता रहे थे।
प्रत्याख्यान और संयोलन लेने पड़ेंगे।
तिर्यंचों में हाँ नहीं बारह लेने पड़ेगा। नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे तो चार ही गुणस्थान है तो बारह तो सात में नहीं लेना।
तिर्यंचों में पांच गुणस्थान है।
ओ सॉरी हाँ बराबर है। प्रत्याख्यान और संयोलन क्योंकि अप्रत्याख्यान का जगह
नारकी में तो हमने बारह कषाय लिए थे और अनंत अनुबंधि को अलग से बताया था ना।
यहाँ पे आज कषाय प्रत्याख्यान और संयोलन लिए।
देखो हम पहले नारकी के सोचते, नारकियों में अनंत अनुबंधि को अलग निकाला और बाकी रिमेनिंग बारह कषाय को अलग निकाला, वहाँ गुणस्थान चार लिए।
तो बारह
तो अनंत अनुबंधि का जगन्य कब होगा? समय को प्राप्त करने के एक समय पहले, यानी मिथ्या दृष्टि का अंतिम समय। अब यहाँ जो आठ कषाय है यानी पहले से पांचवे में जाने वाले के
नहीं, अप्रत्याख्यान का जगन्य चौथे से पांचवे में जाने वाले को होगा ना।
हाँ चौथे से पांचवे यानी वहाँ उन दोनों को छोड़ना है।
हाँ।
अनंतानुबंधी को पहले से
चौथे में जाने वाले, नहीं पहले से पांचवे में,
पांचवे लक्षण और अप्रत्याख्यान का चौथे से पांचवे में जाने वाले, इसलिए बाकी कौन दो बच्चे? ये आठ
प्रत्याख्यान।
हाँ तो इसलिए दो बार आठ लिखा, सम्यक और आठ कषाय का भंग ओघ के समान है और आठ कषाय और छह कषायों का भंग पहली पृथ्वी के समान है। ख्याल में ना, ये दो बार आठ आठ लिखा परंतु वही आठ कषाय नहीं है। देखो ओघ में निकालो तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ना ना वहाँ संयोलन लेनी पड़ेगी। एक मिनट, आगे का भंग किसके समान बताए उन्होंने?
नहीं सम्यक मिथ्यात्व और आठ कषाय
छह नौ आठ कषाय छह नौ कषाय का भंग पहली पृथ्वी के समान जो बताया।
हाँ वहाँ पे प्रत्याख्यान और संयोलन और सम्यक मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंधी और प्रत्याख्यान।
हाँ सम्यक मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी और
अप्रत्याख्यान।
और आगे के आठ कषाय और छह नौ कषाय जो लिए वो प्रत्याख्यान और संयोलन। देखो निकालो, वो भी निकालो इसमें। हाँ साठ पृष्ठ, साठ इतने पीछे स्वामित्व देख रहे क्या? नहीं काल देखो ना डायरेक्ट। काल में अनुत्कृष्ट देख रही थी ना। जघन्य देखना था ना, मैं उत्कृष्ट में चली गई। सब प्रकृतियों के जघन्य का बता दिया, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
तो ओक की अपेक्षा ना।
अच्छा उन्होंने ओक की अपेक्षा अलग अलग बताया था ना, उन्होंने अजघन्य के लिए अलग अलग बताया था। देखो सोलह कषाय और भय जुगुप्सा का एक समय बताया था 71 पर, उसमें से क्लैरिटी नहीं होती है। वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का भंग देख लो, जगन्य अजगन्य में पेज नंबर 71 पर।
सम्यक मिथ्यात्व का तो एक समय जगन्य वाला होगा ना,
एक समय
जो सम्यक करके सम्यक सम्यक मिथ्यात्व। वैसा ही यहाँ पे ये प्रत्याख्यान और संजुलन का
उसका स्वामित्व देखो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तीर्यंचो में हम जगन्य का स्वामित्व देख रहे थे 61 पेज पर। लास्ट
लाइन अनंतानुबंधी का तो संयम
पहले मिथ्या और अनंतानुबंधी के कब होती है? संयमा संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध मिथ्या दिखती। उसके नीचे तीसरी लाइन में अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसकी होती है? संयमा संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध अन्यतर वेदक समय की। और आठ कषाय और नौ नौ कषाय कौन रह गया अभी? आठ में प्रत्याख्यान और संज्वलन मिला आपको 62 पेज पर।
सर्व विशुद्ध संयता संयुक्त
तो सर्व विशुद्ध अन्यतर संयता संयुक्त क्योंकि उसके ये आठ कषायों का भी उदय उदीर्णा चल रही है उसकी। तो उदय उदीर्णा चल रही है तो जगन्य कब होगी? जो विशुद्धि के काल में
तो दो समय भी हो सकती है
सर्व विशुद्धि के काल में। तो यहाँ लिख रहे देखो फिर आना अपने 72 पेज। समय मिथ्यात् और आठ कषायों का भंग हो के समान यानी वो जगन्य का जो है एक समय होगा अपना अपना जगन्य का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अजगन्य का काल कितना होगा उनका अंतर्मूल होगा क्योंकि वो उदय पल के। अब बात रही आठ कषाय और छह नौ कषाय
यहाँ पे जगन्य का जगन्य काल।
अब ये प्रत्याख्यान और संज्वलन का जघन्य और अजघन्य दोनों का देखना है कि छह नौ कषायों के साथ अभी उन्होंने क्या कहा पहली पृथ्वी के समान।
तो जघन्य का एक समय और दो समय होगा।
जघन्य का एक समय दो समय
दो समय और अंतर्भूत हो जाएगा। अजघन्य का एक समय और अंतर्भूत बराबर है ना?
वो जघन्य का
एक समय और अंतर्भूत
अंतर्भूत वो भी घटित होगा। जघन्य के लिए एक समय से दो समय और अजघन्य के लिए
एक समय और अंतर
एक समय से लेकर अंतर। लास्ट लाइन स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है
उत्कृष्ट काल दो समय
उत्कृष्ट काल दो समय। अब इनका जघन्य कब होगा प्रेरणा बिना आपको बताना। तीर्यंचों की बात चल रही है स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक वेद का जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होगी?
हाँ
बता
सर्वविशुद्ध का सॉरी ये तीनों वेद का जघन्य सर्वविशुद्ध सम्यक दृष्टि को होगी।
कौन सा सम्यक दृष्टि? संयत को लेना पड़ेगा।
नहीं वहाँ पे तो नपुसक वेद
क्यों नहीं है?
नहीं होगा सूर्य कर्म हो गया संयत नहीं नहीं
पांचवें में सर्वविशुद्ध वाले के इसके अनुभव की उदीर्णा की बात चले
कर्म
भूमि
का हो
एक समय उत्कृष्ट काल दो समय यानी सर्वविशुद्ध संयता संयत लेना
मेरी गड़बड़ भोग भूमि की अपेक्षा होगी वहां पे तो चौथा गुणस्था है
यानी ऐसा सोचना है
तीनों में
इसका उदय कहाँ पर चल रहा है और
पांचवें
उदय के काल में विशुद्धि कहाँ जा रहा है। तो इसका उदय तो मिथ्या दृष्टि के भी और पांचवें गुणस्थान तक के भी है सबके है तो पांचवें गुणस्थान वाले की उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी तो उसकी जघन्य उदीर्णा उस काल में तो उसके भी लगातार समय दो समय ले लेना कभी भी हो सकती है,
एक
एक
समय
समय
और दो
कम से
समय।
कम दो समय भी चले। अब अजगण्य अनुभाग के उदीरक
ये पांचवा गुणस्थान जो कर्म भूमि का तीर्यन है वो गर्भवती होना चाहिए ना, कि समोक्षम भी प्राप्त कर,
समोक्षम के लिए गर्भवती कंडीशन।
अच्छा पांचवा गुणस्थान तो वेदक समय सृष्टि को भी प्राप्त,
समोक्षम
भी
समोक्षण प्राप्त करते हैं ना, डायरेक्ट पांचवा भी करेंगे वो तो अंतर्मूर्त में भी कर सकते हैं। गर्भज के लिए तो पर्याप्त गर्भज होना चाहिए, उसके कुछ विशेष इतने मास के बाद होगा। अब अजघन्य की बात, ये स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुसक वेद का अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, यानी जघन्य से अजघन्य हुआ एक समय के, तो एक समय घटित होगा। और उत्कृष्ट काल दो वेदों का पूर्व कोटि पुरुषत्व अधिक तीन पल्लोपम है, यानी स्त्री वेद पुरुष वेद का, और नपुसक वेद का अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है। ये तो तीरियन चेन जनरल में घटित होगा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीरियन चक्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व के अजगण्य अनुभाग के उदीरक का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। पंचेंद्रिय तीरियन चक्रिक हर एक को अलग अलग ले लेंगे हम, पंचेंद्रिय तीरियन पर्याप्त योनिमति और फिर सामान्य वाले। नपुसक वेद के अजगण्य अनुभाग के उदीरक का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पुरुषत्व प्रमाण है,
तीन पल्ले नहीं,
वहाँ तीन पल्ले और पूर्व कोटि, और हाँ पूर्व कोटि पुरुषत्व प्लस तीन पल्ले थे
यहाँ पे, खाली पूर्व कोटि,
यहाँ पूर्व कोटि क्योंकि नपुसक वेद नहीं है भोगों में, जिसके दो वेद है उसे जान लेना चाहिए। योनियों में सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल दो समय है। क्या कहा यहाँ, तीरियन चेन जनरल में क्या किया हमने, सम्यक के जघन्य अनुभाग का कितना काल देखा, जघन्य का एक समय कम से कम, और उत्कृष्ट काल नहीं।
नहीं नहीं आपका तो क्या प्रश्न,
मेरा प्रश्न है यहाँ योनियों में
हाँ।
सम्यक के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय लिया, परंतु वहाँ पर जो हम देख रहे थे तीरियन चेन जनरल में
वहाँ पे एक ही समय,
सम्यक्त्व का जघन्य का एक ही समय लिया क्योंकि वहाँ कृतकृत्य वेदक अवस्था में जघन्य होगा, और योनि नियम में जघन्य कब होगा,
तो पांचवें गुणस्थान में सर्व विशुद्ध,
पांचवें गुणस्थान में सर्व विशुद्ध परिणाम वहाँ, ये कृतकृत्य वेदक यहाँ नहीं है तो इनके लिए जघन्य कब कहलाएगा,
सर्व विशुद्ध
अवस्था में। शेष काल वही है, शेष काल ने अन्य प्रकृति पंचेंद्रिय तीरियन पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल दो समय है। अब उदीरना जिनके उदय है उसकी उदीरना होगी वहाँ पर, सम्यक समय मिथ्यात्व का सवाल ही नहीं है वहाँ पर। अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी थ्रू आउट उस पर्याय में रहने का काल दिया। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तीरियन त्रिक के समान भंग है, इतनी विशेषता है सब प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। कब होता है जघन्य,
मिथ्यात्व का तो संयुक्त सम्मुख मिथ्या दृष्टि को,
मिथ्यात्व का कब,
संयम के समूह
संयम के बराबर
और बाकी का चौथे गुण स्थान के
चौथे के सन्मुख अनंतानुबंधी का
मिथ्यात्मा
संयम के सन्मुख वहाँ तो प्रथम उपशम भी ले सकते हैं क्योंकि प्रथम उपशम के काल में अंतर नहीं पड़ता उसका यानी वहाँ कोई कंडीशन नहीं है उसके
प्रथम उपशम से संयम के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि उसका और कम होगा ना अनुभव क्योंकि प्रथम उपशम में उसका अंतर नहीं पड़ता है पर वहाँ पे अनुभव ज्यादा होगा संयम के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उसके अनंत अनुबंध
प्रथम उपशम समय तो प्लस संयम
अच्छा दोनों साथ चलिए
हाँ तो कहो सकता है ना उसमें अंतर तो नहीं पड़ता है ये बात लेकर हम तो केवल संयम के सम्मुख कहेंगे वो प्रथम उपशम वेदक की बात नहीं कहेंगे ये तो हो गया और प्रत्याख्यान का कब होगा चैतन्य
अप्रत्याख्यान का चैतन्य
संयम के सम्मुख चौथा गुणस्थान का चौथा है वो सातवें में जाएगा
चौथे से सातवें जाएगा
प्रत्याख्यान का पांचवा है वो सातवें में जाएगा
जाने की
अपेक्षा संज्वलन का
अपने अपने सपना में
सपना में मनुष्य त्रिक की बात की है एक समय होगा हर एक का अपना अपना सम्यक्त्व के अजगन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है सम्यक्त्व में रहने का काल कहो मनुष्य पर्याप्तकों में एक समय है एक कृतकृत्य वेदक के साथ वहाँ मनुष्य ही
योनिमति जो
योनिमति ने प्राप्त किया यानी मनुष्य ही मनुष्य में उत्पन्न हुआ और वहाँ कृतकृत्य वेदक अब देवों में मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय देवों में वही प्रथम उपशम समय का आवलि प्लस एक समय वाला सब ले अजघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है ये मिथ्यात्व में रहने
का
और उत्कृष्ट काल 31 सागरूपम है सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है सम्यक्त्व का जघन्य कब होगा और जघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल एक समय वो भी कृतकृत्य वेदक लेना उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम सर्वाचर्य सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 नौ कषायों का भंग पहली पृथ्वी के समान है समय मिथ्यात्व का तो अंतिम समय में जघन्य होगा उसके समय से प्राप्त यानी वहां से चौथे में जाने वाला है जघन्य होगा 16 कषाय 6 नौ कषायों का
वो तो अंतर्भूत जघन्य
अनंतानुबंधी का जघन्य तो अंतिम समय मिथ्या दृष्टि लेना संयम अभी देवों में है तो समय को प्राप्त करने वाला है और बाकी 12 कषायों का जघन्य कब होगा सर्व विशुद्ध समय
दृष्टि एक समय दो समय होगा
इतनी विशेषताएं के हास्य और रति के अजघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल 6 महीना वो तो सामान्य देव है इसलिए 6 महीना लिख दिया त्रिवेद और पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल एक समय है उत्कृष्ट काल 2 समय ये भी सर्व विशुद्ध समय दृष्टि ले जघन्य करने वाला अजघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल एक समय है इन्हें जघन्य से अजघन्य किया वापस जघन्य किया उत्कृष्ट काल क्रम से 55 पल्योपम श्रीवेद के लिए और 33 सागरोपम पुरुषवेद के लिए इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर नव ग्रहवेद तक के देवों में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए हास्य और रति का भंग रति और शोक के समान जानना चाहिए। मात्र सहस्रार कल्प में हास्य और रति का भंग सामान्य देवों के समान जानना चाहिए, वो 6 महीने का। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल दो समय, ये सर्व विश्व तो समय दृष्टि है, क्योंकि यहाँ सुश्रुत के वेदक नहीं उत्पन्न होते। अजघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जब विशुद्ध नहीं है, जघन्य से अजघन्य हुआ, वापस जघन्य हुआ। और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति पर मान। श्री वेद के अजघन्य अनुभाग के उद्गीरक का जघन्य काल एक समय है, वो जघन्य से अजघन्य होकर वापस जघन्य हो जाएगा। और उत्कृष्ट काल क्रम से 3 पल्योपम भवनवासिनी में, साधिक 1 पल्योपम यंत्रों में, साधिक 1 पल्योपम ज्योतिषी देवियों में। सौधर्म और ऐशान कल्प में स्त्री वेद का भंग सामान्य देवों के समान है, ये 55 पल्योपम। आगे के देवों में स्त्री वेद नहीं है। अनुदित से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक 12 कषाय और 7-9 कषायों का भंग आनंद कल्प के समान है। इतनी विशेषता है, अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो काल की प्ररूपणा हुई उत्कृष्ट की और जगह में। अब कहते अंतरम, अब थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। अंतर काल का अधिकार है। यहां से एक जीव विषयक अंतरकाल को कहेंगे। इस प्रकार अधिकार का परामर्श करने वाला यह सूत्र वचन है। मिच्छत्तस्य उक्तस्य अनुभाग उदीरगंतरम केवचिरम कालाद होदी। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना अंतरकाल है, यानी मैं उत्कृष्ट हुआ, वापस अनुत्कृष्ट हुआ, फिर उत्कृष्ट, कितने
एक समय में,
तो यह पृच्छा वाक्य सुगम है। उसका उत्तर है जघन्येन एक समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट पने को प्राप्त होकर तथा एक समय के लिए अंतर करके फिर भी दूसरे समय में उत्कृष्ट भाव के प्राप्त होने पर एक समय प्रमाण उक्त अंतरकाल प्राप्त होता है। उसके अनुभाग बंधक उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक होगा, परंतु यहाँ ये परिणाम लेना है। नंबर 14 अनुयोग नंबर अपने डाल दिया मैंने, काल की बात हमने डाली थी ना, तो उसका ही रह गया था। काल को लाला था 13 नंबर 62 था। अब यहाँ 74 पर हमने 14 नंबर अंतर काल दिया। तो जघन्य अंतर एक समय देखा हमने। उपकस्य न असंख्य पुगल परिवर्तन, उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात पुगल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक कौन है, तो संघी पंचेन्द्रिय वो पर्याप्त जीव और संकलेश परिणाम वाला, क्योंकि संघी पंचेन्द्रियों में उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात पुगल परिवर्तन, संघी पंचेन्द्रियों में उत्कृष्ट संकलेश वश उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा का प्रारंभ कर तथा उसे अंतरित कर और एकेंद्रियों में प्रवेश कर एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण काल तक उत्कृष्ट अंतर का अनुपालन कर फिर भी परिनिवृत्त होकर त्रसों में आकर उत्कृष्ट संकलेश पूर्वक उत्कृष्ट उदीर्णा के प्राप्त होने पर उक्त अंतरकाल प्राप्त होता है। यानी त्रस हुआ तो भी क्या संकलेश उत्कृष्ट संकलेश हुआ, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। अनुकस्त अनुभाग उदीरक अंतरम केवचिरम कालादोहोदी, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का अंतरकाल कितना है, ये मिथ्या तो की बात चल रही है।
ठीक समय,
यह सूत्र सुगम है, जघन्य अंतरकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव को प्राप्त होकर एक समय के लिए अंतरित कर फिर भी तदनंतर समय में अनुत्कृष्ट भाव से परिणत होने पर उक्त अंतरकाल प्राप्त होता है। और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 266 सागरूपम है, यथा मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जीव प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख होकर मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में आवली मात्र शेष रहने पर अनुदीरक भाव से अंतर कर तदनंतर सम्यक्त्व को उत्पन्न कर सबसे उत्कृष्ट उत्तम सम्यक्त्व के काल को बिता कर, यहाँ इसलिए लिया वो आवली भी बढ़ी और उत्सम का काल भी बढ़ा, तो अनुदीरक रहा ना उतने काल वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर तथा अंतर्मूर्तकम 66 सागर काल तक उसका पालन कर उसके अंत में सम्यक मिथ्यात्व के द्वारा अंतर्मूर्त काल तक वेदक सम्यक्त्व को अंतरित कर, ये मिथ्यात्व से उदीर्णा नहीं हो रही है ना इतना देखना है, इसलिए अब यहाँ सम्यक मिथ्यात्व में भी लाया। फिर भी वेदक सम्यक्त्व की प्राप्ति द्वारा द्वितीय 66 सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अंत में अंतर्मूर्त मात्र शेष रहने पर मिथ्यात्व में जाकर यदि नहीं जाता तो वहीं पर शायद हो जाता, यह हमें अंतर्गठित करना है। तो मिथ्यात्व में जाकर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के गुणा हुआ है गुणस्थान के प्रथम समय में मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक हो गया, इस प्रकार उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हुआ। अब शेष कर्मों की भी स्तोक विशेषता से युक्त यही प्ररूपणा करनी चाहिए, इस बात का कथन करने के लिए अर्पणा सूत्र को कहते हैं, वो हम कल देखें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो तो
नमोरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आयानं नमो ध्यानं नमो लोहे सर्वस्वानं नमोरियंतानं नमो सिद्धानं।